स्कंद से अध्याय 5। इस अध्याय का शीर्षक है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रह्लाद। श्लोक क्रमांक 14। यथा भ्राम्यत्य अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतस चक्रपाणि यदृच्छया। यथा ब्राह्म्यतयो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे भिद्यते चेतस चक्रपाणि यदृच्छया। यथा जिस प्रकार ब्राह्म्यति घूमता है अयह लोह ब्राह्मण हे ब्राह्मणों स्वयं अपने आप आकर्ष चुंबक के सन्निधौ निकट तथा उसी तरह में मेरी भिद्यते बदलती है चेतः चेतना चक्रपाणे हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु की यदृच्छया केवल इच्छा मात्र से। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। हे ब्राह्मणों अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तात्पर्य, चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों को कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। और इसीलिए भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ है हरेक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहां हर वस्तु तथा हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद महाराज तथा यशोदा देवी, वयोवृद्ध लोग, श्रीदामा सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मित्रगण तथा श्रीमती राधारानी तथा उनकी सखी गोपियां और यहां तक कि पशु पक्षी गाय तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट हैं, यमुना की तरंगे आकृष्ट हैं तथा स्थल आकाश वृक्ष लताएं पशु तथा अन्य सारे जीव आकृष्ट हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु की यह स्वाभाविक स्थिति है। वृंदावन के व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत है, जहां सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का यही अंतर है। हिरण्यकश्यपु इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियां तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रह्लाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रह्लाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। प्रह्लाद ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकश्यपु अप्राकृत रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतएव उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जो ही मनुष्य भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की धूल से कलमश कलुषित है और वह विभिन्न उपाधियों के अनुसार कर्म करता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर दूर कर देना चाहिए, तभी वह स्वभावतः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है और तब माया की सेवा न करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही उसकी प्राकृतिक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है लेकिन अभक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। येषां द्वंद्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जीवन में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम के द्वैत से मुक्त हैं, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में संलग्न होते हैं। मनुष्य को संसार की पापमय धूल से सर्वदा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से दूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, अन्य अभिलाषित शून्यम, तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं होता। हे ब्राह्मणों, अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम स्वागत करना चाहेंगे आज के इस पावन दिवस पर, श्री नृसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव। और विशेष कार्यक्रम होगा शाम को, अभिषेक, प्रवचन और कीर्तन, नाटिका, प्रसाद। परंतु भगवान श्री नरसिंह देव विशेष रूप से आविर्भूत हुए अपने भक्त प्रह्लाद को कृपा बांटने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि शाम को नरसिंह देव आविर्भूत होंगे तो उनकी कृपा लेने से पहले हमें उनके जो भक्त हैं श्री प्रह्लाद, उनकी कृपा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाका प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम सर्वार्हणम भजमच्युतेज्य। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान विष्णु वो एक वृक्ष के मूल के समान है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, और न केवल वो मूल के समान है बल्कि शरीर में पेट के समान है। और भगवान विष्णु यदि मूल के समान है और यदि शरीर में पेट के समान है, तो हम इस उदाहरण से यह समझ सकते हैं कि यदि हमें वृक्ष के मूल तक पहुंचना है तो हमें कहां से जाना होगा? वृक्ष के मूल तक पहुंचने के लिए कहां से जाना होगा? भूमि से, मिट्टी से। यदि खाने को पेट तक पहुंचना है तो उसे कहां से जाना होगा? जिह्वा से। तो यदि भगवान विष्णु की तुलना वृक्ष के मूल से की गई है, शरीर में पेट से की गई है, तो मिट्टी की तुलना की गई है भक्तों से, भूमि की तुलना की गई है भक्तों से, और जिह्वा की तुलना की गई है भक्तों से। यदि पेट में हमें कुछ डालना है तो ज्यादातर तो पेट से ज्यादा लोग जिह्वा पर डालते हैं। ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? जिह्वा को। पेट तो किसी से भी भर सकता है, घास अंदर डालो तो भी पेट भर जाएगा। कोई पत्ते वृक्ष के डालो तो पेट भर जाएगा, परंतु उसी पत्ते को जब स्वादिष्ट तरीके से बनाया जाता है तो किसके लिए बनाया जाता है? जिह्वा के लिए। और देखिए एक जिह्वा पर कितने स्वाद हैं, नमकीन, मीठा, खट्टा और क्या है, चटपटा, कड़वा। देखिए भगवान की टेक्नोलॉजी कि ये 2 इंच की जिह्वा है, इसके ऊपर कितने अलग अलग स्वाद रख दिए। और कई बार एक खाद्य पदार्थ में अलग अलग प्रकार के स्वाद होते हैं, एक खाद्य पदार्थ में, या तो खट्टा चाहिए या मीठा चाहिए, फिर जिह्वा को दोनों भी चाहिए एक साथ, खट्टा और मीठा दोनों। तो जब कभी भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यदि भोजन स्वादिष्ट है तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा स्वाद है, तो वो स्वाद चखने का गुण पेट में है। क्या पेट कह रहा है बहुत अच्छा स्वाद है? बेचारे पेट के लिए तो कोई स्वाद मिलता नहीं, सब कुछ स्वाद जिह्वा ले लेती है पहले, और पूरा पीस कर फिर बाद में पेट को वो रिसाइकल मिलता है। ये गोडाउन के समान है पेट, केवल इसमें माल भरा जाता है और निकाला जाता है। लेकिन ये गोदाम में माल भरने से पहले बीच में ये ऑक्ट्रोइना का आता है, ये जिह्वा, और वहां से जब तक पास ना हो तब तक ये अंदर गोदाम में माल नहीं जाएगा, और वहां से रिजेक्ट हो गया तो कई बार बाहर आ जाता है। छोटे बच्चों को देखिए, कुछ अच्छा स्वाद नहीं लगता जिह्वा के लिए, थूक देते हैं बाहर, है ना। तो यदि जिह्वा के विषय में इतना कुछ कहा गया है, देखिए शास्त्रों में जिह्वा के विषय में क्या कुछ नहीं कहा गया, तार मध्य जिह्वार अति लोभमय सुदुर्मति, जिह्वा वेगम, रूप गोस्वामी भी कहते हैं जिह्वा के विषय में इतना कहा गया, परंतु पेट के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्योंकि पेट की तुलना में जिह्वा अधिक शक्तिशाली है। तो यदि हम पेट का उदाहरण और जिह्वा का उदाहरण लें तो पेट से शक्तिशाली जिह्वा हुई, और पेट की तुलना की गई है भगवान से, और जिह्वा की तुलना की गई है भक्तों से, तो दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन हुए? कौन हुए? भक्त। तो यदि भगवान श्री नरसिंह देव की तुलना पेट से की जाए और प्रहलाद महाराज की तुलना जिह्वा से की जाए तो कौन शक्तिशाली हुए ज्यादा? अब यदि प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान के सामने खड़ा देखें हम, जैसे हम फोटो में देखते हैं, तो नरसिंह भगवान कितने बड़े हैं और इतने खूंखार कि ब्रह्मा शिवजी दोनों कांप रहे थे नरसिंह भगवान के सामने और बहुत दूर खड़े थे। कांप तो रहे ही थे परंतु वो उनका जो कंपन था बहुत दूरी से हो रहा था। यहां तक कि शिवजी जो तांडव नृत्य करके प्रलय करते हैं, शिवजी भयभीत, तब दोनों ब्रह्मा जी और शिवजी जब नरसिंह भगवान के क्रोध को देखते हैं, और केवल देखते नहीं सुनते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान केवल क्रोध दिखा नहीं रहे थे बल्कि सुना रहे थे। उनकी जो चिंगाड़ और सिंह आधे सिंह के रूप में है, तो उनकी जो चिंगाड़ थी इतनी जोर से उसकी ध्वनि आ रही थी कि मानो वो व्यक्ति के कर्णों के पर्दों को फाड़ रही हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि यदि शिवजी तो सोच रहे थे कि यदि भाई ये इतने क्रोध अवस्था में है तो चलो मेरा काम यही कर देंगे शायद प्रलय का, तो थोड़ा छुट्टी मिलेगी। परंतु ब्रह्मा जी वो देखे कि समय ठीक नहीं है, यदि नरसिंह भगवान को शांत नहीं किया गया तो जो सृष्टि मैंने रचाई है और जो कुछ अभी काम कार्य बाकी है, बाकी इतने सारे अवतार और बाकी हैं आने, तो यहां तो नरसिंह देव कल्कि का रूप ले लेंगे और बीच में इतने सारे और अवतार बाकी हैं, राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तो इसलिए शांत करना होगा, इनको शांत करना होगा। तो दोनों ने चर्चा की कि भाई कौन शांत करेगा, तो गए लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी देवी के पास गए कि भाई आप इनकी विवाहिता पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो आपको तो सारा क्रेडिट मिलना चाहिए इनको शांत करने का, या आपके पास सारे गुण होने चाहिए इनको शांत करने के। अक्सर उल्टा हो जाता है, कई बार पति अशांत हो जाता है किसी कारणवश, परंतु यहां पर लक्ष्मी देवी को कहा गया कि भाई आप जाइए और आप शांत कीजिए, आपके पति हैं। तो लक्ष्मी देवी और राजी हो गए, भाई उसमें क्या है, मेरे अंदर सारे गुण हैं इनको शांत करने के, बहुत बार किया है शांत। तो लक्ष्मी देवी जब जाती हैं, परंतु जब नरसिंह भगवान का दर्शन करती हैं लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी पूछ रही है कहां है पति। तो ब्रह्मा और शिव जी कहते हैं ये सामने, ये आधे नर और आधे सिंह यही हैं आपके पति। तो लक्ष्मी देवी वो इनको तो मैंने कभी देखा नहीं इस रूप में, और लक्ष्मी देवी कांपने लगी और लक्ष्मी देवी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस के नहीं है, ये मेरे बस के भी बाहर हैं। और तब जाकर सभी सोचने लगे कि एक ही व्यक्ति है अब जो बाकी रह गए हैं जो इनको शांत कर सकते हैं, और वो है श्री प्रह्लाद। तो ब्रह्मा जी प्रह्लाद महाराज के पास जाते हैं कि भाई आपके वजह से ही आए हैं इस रूप में, हालांकि प्रह्लाद महाराज कह रहे थे आपके वजह से इस रूप में आए हैं, मेरे वजह से खंभे से आए। तो प्रह्लाद महाराज को कहते हैं कि आप जाइए आप शांत कीजिए, तो बिल्कुल निडर प्रहलाद महाराज, कोई डर नहीं उनके अंदर। ऐसा नहीं कि गुस्से में एक नाखून प्रहलाद के ऊपर चला दिया होगा ये सोचते हुए प्रहलाद महाराज थोड़ा कुछ हाथ में कुछ ढाल लेकर जा रहे थे, वो माला लेकर जा रहे थे हाथ में नरसिंह भगवान को। और देखिए नरसिंह भगवान को माला पहनाना कोई साधारण खेल नहीं। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे कि यदि कोई बाहर वाला व्यक्ति आकर देखेगा कि इस हरे कृष्ण आंदोलन में हम इन प्रहलाद को महाजन मानते हैं कि जो अपने बाप के हत्यारे को माला पहना रहा है, कि बहुत अच्छा ये लो मेरे तरफ से माला, जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी जो शांत नहीं कर पाए, प्रसन्न नहीं कर पाए भगवान श्री नरसिंह देव को, प्रहलाद महाराज सामने आते ही भगवान नरसिंह देव शांत हो गए। तो ये है प्रहलाद महाराज के गुण। और इस श्लोक में प्रहलाद महाराज वो बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं और वो अपनी तुलना एक लोहे से कर रहे हैं, और भगवान श्री नरसिंह देव या कृष्ण की तुलना, श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे कि नरसिंह देव कृष्ण ही है। कैसे कृष्ण है? केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, कि उनका गुणगान हम करते हैं केशव धृता, केशव नाम से, जो कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो यहां पर प्रहलाद महाराज वो अपनी तुलना एक लोहे से कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की तुलना चुंबक से, लोह चुंबक से कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर ये उदाहरण लिया है उन्होंने, और वो किसे सुना रहे हैं ये उदाहरण? किसे सुना रहे हैं? नहीं, षंड और अमर को, षंड और अमर को सुना रहे हैं इस उदाहरण से। षंड और अमर वो आसुरिक विद्यालय में, हिरण्यकशिपु आसुरिक विश्वविद्यालय, उसमें षंड और अमर क्या सिखाते थे प्रहलाद महाराज को कि किस प्रकार से कपट करना चाहिए, कपट की डिग्री कैसे ली जाए, राजनीति पॉलिटिक्स, ये मेरा मित्र ये मेरा शत्रु, इससे द्वेष करो इससे मित्रता करो, यहां फायदा यहां नुकसान, ये सब कुछ शिक्षा षंड और अमर्क प्रहलाद को दे रहे थे। और प्रहलाद महाराज बहुत ही नम्रता से सुन रहे थे, परंतु भगवान प्रहलाद महाराज ने केवल सुना, उसका श्रवण नहीं किया। सुनने में और श्रवण करने में अंतर है। जैसे ये पंखे की आवाज आ रही है तो ये भी हमारे कानों में जा रही है, और इस माइक्रोफोन से जो कुछ बोला जा रहा है वो भी आशा करते हैं कानों में जा रही होगी। तो हमारी ये आशा है कि जो माइक्रोफोन से आवाज जा रही है वो हम श्रवण कर रहे हैं, और ये जो पंखे की आवाज है इसको सुन रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज जब षंड और अमर्क कह रहे थे तो उसे सुन रहे थे। अक्सर हमारे श्रवण और सुनने में क्या अंतर हो जाता है कि कई बार अन्य सारी आवाजें हम श्रवण करते हैं और साथ साथ जो प्रभु जी बोलते हैं उसको सुनते भी हैं। और कई बार सुनते क्यों हैं? ताकि पता रह जाए कि कब खत्म होने वाला है। आज तो वैसे भी उपवास है संध्या काल तक, और आज छुट्टी भी है, छुट्टी है आज, छुट्टी भी है और कुछ करने के लिए वैसे तो कुछ है नहीं, ठीक है तो बोलते रहिए, इतनी ज्यादा तपस्या नहीं होगी। अब देखिए प्रहलाद महाराज के जीवन में, प्रहलाद महाराज ने श्रवण भी किया और प्रहलाद महाराज ने यह सुना भी। श्रवण किसे किया? नारद मुनि से। और कहां किया श्रवण? जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। ऐसा नहीं कि नारद मुनि ने कोई ऐसी क्लास रखी थी जहां अच्छे पंखे चल रहे हैं, अच्छे अच्छे लैंप लगाए हैं, हाँ? और ऐसा कोई टेंपल हॉल जहां नया नया पेंटिंग हुआ है, हाँ? तो यदि लेक्चर से बोर हो जाए तो चारों तरफ देखकर थोड़ा नजारे देखकर मनोरंजन कर लें, हाँ? नारद मुनि ने कोई ऐसा प्रवचन नहीं रखा था, ये सब अरेंजमेंट नहीं था। नारद मुनि वास्तविक रूप में प्रवचन, हालांकि उनका उद्देश्य था प्रहलाद महाराज को प्रवचन देने का, परंतु वो किसे ध्यान में रखते हुए प्रहलाद महाराज को सुना रहे थे? कयाधु को। तो हिरण्यकशिपु वो तपस्या करने गया और कयाधु उस समय गर्भवती थी, तो सारे देवताओं ने सोचा कि भाई ये हिरण्यकशिपु अब नहीं है और ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है और ज्यादा बड़ा राक्षस बनने के लिए, हाँ? मतलब और डिग्री, राक्षसी डिग्री और लेने के लिए गया है। पहले से ही ग्रेजुएट है, अब पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी उसकी डिग्री लेने गया है मंदराचल पर्वत पर। तो सारे देवता इंद्र ये सभी ने सोचा कि ये जो जूनियर हिरण्यकशिपु गर्भ में है कयाधु के, इसे खत्म करो, कि पहले से वो जो सीनियर है उसने परेशान कर रखा है, अब एक और अंश आ जाएगा, विस्तारित अंश उस हिरण्यकशिपु का, तो पता नहीं वो क्या करेगा। तो उन्होंने वो ये सभी कयाधु को बंदी बना लिए और अब प्रहलाद को गर्भ में ही मारने वाले थे, कयाधु को मारने वाले थे, गर्भपात नहीं करने वाले थे वो, या गर्भ हत्या नहीं करने वाले थे। तो नारद मुनि जैसे उन्हें पता लगा तो भागते हुए गए और कयाधु को सबसे पहले, कयाधु की रक्षा की, और इतनी रक्षा की कि कयाधु को अपने आश्रम में लेकर गए, क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि प्रह्लाद इतना महान भक्त भगवान का, और इनके वजह से भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट होने वाले हैं, तो इनकी रक्षा तो अवश्य करनी चाहिए। तो नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं और वहां पर ये भगवत ज्ञान सुनाते हैं। और नारद मुनि जब प्रवचन दे रहे हैं तो कयाधु सुन रही थी और प्रहलाद महाराज गर्भ में श्रवण कर रहे थे, नहीं तो सारे श्लोक, सारे ये जो भगवत भक्ति के श्लोक कयाधु को भी हिरण्यकशिपु को पहले सुनाने चाहिए थे, परंतु कहीं पर हम नहीं पढ़ते कि कयाधु सुना रहे तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात, ये सब कयाधु ने नहीं सुनाया, प्रहलाद महाराज उस अवस्था में अपने माता के गर्भ में, उस अवस्था में प्रहलाद महाराज ने देखिए कैसा श्रवण किया, और देखिए क्या टेक्नोलॉजी उस समय, कि आजकल तो टेक्नोलॉजी से पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में शिशु किस अवस्था में है, गर्भ में शिशु नर है या मादा है, क्या है पता लगाया जा सकता है। परंतु यहां पर टेक्नोलॉजी देखिए कि नारद मुनि कह रहे हैं और गर्भ के अंदर शिशु उसका ठीक ठीक श्रवण कर पा रहा है। और ऐसा नहीं था कि कोई मोबाइल फोन सिस्टम लगा रखा था वायरलेस कि नारद मुनि यहां से सुना रहे हैं और प्रहलाद महाराज को अंदर उसका श्रवण हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने इतनी तीव्रता से श्रवण किया कि पैदा होते ही प्रहलाद महाराज इसके प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, कि पूरा अभी ट्रेनिंग हो गया था श्रवण की, तो पैदा होते ही फिर कीर्तन प्रचार शुरू प्रहलाद महाराज का, 5 वर्ष की उम्र में ही प्रचार शुरू कर दिया। और यहां पर शंड और अमरक ये जो सुना रहे हैं ये सब आसुरिक ज्ञान, प्रहलाद महाराज अब शंड और अमरक को सुना रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम लोग चाहते हो कि मैं ये राजनीति कपट ज्ञान ये सब मैं अपने जीवन में ये सब अर्जित करूं। तो प्रहलाद महाराज देखिए बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत गर्वित होकर घमंड से शंड और अमर को कह रहे हैं, बहुत ही नम्रता से ईमानदारी से वो शंड और अमर को कहते हैं कि देखो मेरे हाथ में नहीं है, तुम दोनों इतना प्रयास कर रहे हो मुझे असुर बनाने का, परंतु मेरे हाथ में नहीं है ये। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, चक्रपाणेर यदृच्छया, किसकी इच्छा से हो रहा है सब कुछ, चक्रपाणि, वो भगवान विष्णु जिनको चक्रपाणि कहा गया है, चक्रधारी कहा गया है, उनकी इच्छा से। और अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कोई स्वतंत्रता नहीं है, उनके कारण ही मैं तो केवल एक कठपुतली हूं, और वो है चक्रपाणी जो इस कठपुतली को नचा रहे हैं। इस भौतिक संसार में देखते हैं कि सभी जीवात्मा कठपुतली हैं, जो शुद्ध भक्त है वो भी कठपुतली है और जो बद्ध जीवात्मा है वो भी कठपुतली। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने मार्किने भागवत धर्म में वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैं एक कठपुतली हूं आपके हाथ की, जैसे आप मुझे नचाना चाहिए नचाना चाहें वैसे आप नचाइए, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। तो एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी वो भी अपने आप को कठपुतली कह रहे हैं और इस संसार के जो बद्ध जीवात्मा है उन्हें भी कठपुतली कहा गया है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर है कौन चला रहा है। वो चित्र हमने देखा होगा, माया देवी अपने 3 गुणों को बहुत ही सुंदर, ये स्त्रियां ये चित्र देखा हो बहुत सुंदर दिखने में है, ये 3 गुण के प्रतीक जो है ये स्त्रियां, और ये बद्ध जीवात्माओं को बांधे हुए हैं डोरी से और नचा रही हैं कठपुतली के समान। अब देखो जो व्यक्ति कठपुतली को देखता है नाचते हुए वो व्यक्ति को बहुत आनंद आता है, कितनी सुंदर कठपुतली नाच रही है, तो जब दर्शक आकर बैठते हैं किसी कठपुतली के शो में तो जब देखते हैं कठपुतली का शो चल रहा है पपेट शो तो सभी ताली मारते हैं और वाह 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 कितने सुंदर है कठपुतलियां। परंतु यदि कठपुतली से पूछो तो उस बिचारे कठपुतली की हालत हो रही, क्योंकि एक तो बांधे हुए है वो, और वो कठपुतली जैसे वो व्यक्ति नचा रहा है वैसे हाथ ऊपर करना पड़ता है, कोई विश्राम नहीं उस कठपुतली को। तो एक बद्ध जीवात्मा देखिए ऐसी बद्ध अवस्था में है कि जब दूसरा बद्ध जीवात्मा देखता है इस बद्ध जीवात्माओं को इंद्रिय भोग करते हुए, और वो वास्तविक रूप में क्या है, कठपुतली का खेल, ये सारा जो इंद्रिय भोग चल रहा है इस भौतिक संसार में ये माया का कठपुतली का खेल है। कभी किसी को यहां हिलाती है माया इस कठपुतली को, चलो यहां जाओ, ये देखो, ये खाओ, ये चखो, ये स्पर्श करो, ये सुनो। तो वो व्यक्ति जो माया का कठपुतली बनकर यहां वहां भाग रहा है, इति उति धाय, भागवत में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भाग रहा है इति उति कठपुतली के समान। और जो व्यक्ति इस कठपुतली के समान माया के अधीन होकर भाग रहा है, दूसरे जो है जिनको नहीं मिला इंद्रिय भोग, वो देखकर गुणगान करते हैं, देखो कितना अच्छा इंद्रिय भोग मिला है, जैसे दर्शक गुणगान करते हैं उस कठपुतली के शो का। परंतु यहां पर प्रहलाद महाराज अपने आप को एक कठपुतली कह रहे हैं कि मैं भी एक कठपुतली हूं, परंतु मैं कृष्ण के हाथ का एक कठपुतली हूं। और वास्तविक रूप में हमें यही बनना है। जब हम कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो कृष्ण की भक्ति प्रारंभ करने से क्या होता है, हम कठपुतली रहते हैं परंतु ऊपर चलाने वाला व्यक्ति बदल जाता है, पहले माया और अब योग माया, अब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं उस कठपुतली को। तो यहां पर प्रहलाद महाराज बहुत ही सुंदर उदाहरण, दो उदाहरण दे रहे हैं, एक तो मैं कठपुतली हूं और दूसरा मैं लोहे के समान हूं जो कि स्वाभाविक रूप से चुंबक से आकर्षित हो जाता है। और कई बार हमने बचपन में देखा है, खेलते भी थे हम, चुंबक को लेते थे और रखते थे लोहे के निकट और देखते थे अपने आप जो लोहा है वो चुंबक की ओर दौड़ कर आता है। अब इस चुंबक और लोहे के उदाहरण को भी हम लें, तो यदि लोहा बहुत बड़ा है तो वो चुंबक को खींचता है, और यदि चुंबक बहुत बड़ा है तो लोहे को खींचता है। तो यहां पर किसने किसको खींचा है, हालांकि प्रहलाद महाराज नम्रता से कह रहे हैं कि मैं उस लोहे के समान हूं जो मैं खींचा जा रहा हूं भगवान जो कि चुंबक के समान है उनकी तरफ। परंतु यहां पर प्रहलाद महाराज ने वास्तविक रूप में नरसिंह भगवान को खींचा है, और कहां से कहां खींचा, भगवान के धाम से नीचे खींच लिया। तो इस उदाहरण में हम क्या समझ रहे हैं कि ये लोहा इतना बड़ा है कि भगवान जो कि चुंबक के समान है वो खींचे जा रहे हैं इस लोहे के तरफ। ये है प्रहलाद के गुण, हालांकि है केवल छोटे से 5 वर्षीय। वो मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, बराबर है। तो प्रहलाद महाराज की मूर्ति देखोगे तो लहान, बहुत छोटे से प्रहलाद, परंतु कीर्ति देखो कितनी महान है कि इतने बड़े नरसिंह भगवान को उनके आध्यात्मिक संसार से खींचकर खंभे में रख दिया। यह है गुण एक भक्त के। और बहुत ही सुंदर यह उदाहरण है लोहा और चुंबक का, कि हमारी जो चेतना है वो वास्तविक रूप में जैसे चुंबक से लोहा आकर्षित हो जाता है वैसे ही होनी चाहिए। परंतु कौन सी स्थिति में लोहा भी है और चुंबक भी है, कौन सी स्थिति में लोहा चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, जब उसके ऊपर जंग लग जाएगा। क्या कह रहे थे आप? जब लोहे के ऊपर जंग चढ़ता है तो लोहे के अंदर सारे गुण हैं चुंबक के प्रति आकर्षित होने के, और चुंबक के अंदर सारे गुण हैं लोहे को आकर्षित करने के। तो तकलीफ किसमें है? तकलीफ है लोहे में, और लोहे में भी नहीं, लोहे के ऊपर जो जंग चढ़ गया है उसके ऊपर, वो है तकलीफ। तो हम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो सर्व आकर्षक, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने अपनी पूरी शक्ति डाल दी इस हरे कृष्ण महामंत्र में, मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण आकर्षण करने वाली शक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र में है, और हम आकर्षित होना तो दूर की बात है, दूर जितना दूर हो सके खत्म करते ही दूर भागते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र से। माला खत्म करते ही इसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर दिखाई भी ना दे दिन भर। तो क्यों, ये जो स्वाभाविक आकर्षण शक्ति भगवान में है, हम क्यों नहीं आकर्षित हो रहे? क्योंकि जंग चढ़ा हुआ है, और वो जंग किसका चढ़ा हुआ है? काम क्रोध लोभ मोह, एक एक लेयर है सब जंग के, ये छह लेयर हैं हमारे इस लोहे के ऊपर, और बहुत इनके जो मात्रा है, जिस गणना में लेयर हैं, वो भी अलग अलग है। अहंकार का लेयर सबसे मोटा है, बाकी सारे जो हैं वो थोड़े नीचे हैं, परंतु अहंकार का लेयर सबसे मोटा है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये सारे जंग के लेयर हमारे इस हृदय में, लोहे रूपी हृदय में आवृत है ये लोहा, इससे इसलिए कोई आकर्षण नहीं दिखता जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। उल्टा क्या दिखता है, जब जंग जो है दिखने में भी बहुत कुरूप दिखता है। कोई लोहे को जंग चढ़ा हो, वो लोहा दिखने में बहुत कुरूप दिखता है। तो उसी प्रकार से अंदर ये स्वाभाविक कृष्ण प्रेम है जो कि इतना सुंदर है, परंतु ये स्वाभाविक कृष्ण प्रेम इस जंग के कारण इतना ढका हुआ है कि हमें भगवान का नाम भी सुंदर नहीं दिखता या उसका आस्वादन नहीं होता। और रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जिसको पीलिया का रोग हो गया है, जॉन्डिस, उसकी जिह्वा भी एक प्रकार से जंग चढ़ जाती है उसके ऊपर, कि गन्ने का रस पिलाओ और कड़वा लगता है, जो कि सबसे मधुर रस है जिसमें कोई चीनी डालनी नहीं पड़ती, जो चीनी ही है, चीनी उससे बनती है, बाकी जो रस है उसमें चीनी डालकर उसको मीठा करना पड़ता है। यहां पर गन्ने का रस इसका उदाहरण दिया गया है, इससे मीठा और क्या हो सकता है, वो कड़वा लगता है। तो भगवान का नाम इससे अधिक मीठा, मानो गन्ने के रस को आप करोड़ों की तुलना में उसकी गणना करो, तब जाकर कुछ कल्पना होगी कि भगवान का नाम कितना मधुर है। अभी यदि हमारे सामने अपनी बीड़ बैग रख दो और एक ठंडा गन्ने के जूस का ग्लास रखो, किसको देखकर जीभ से पानी आएगा? बीड़ बैग देखकर कभी जीभ से पानी आता है? या हम भागते हैं, अरे बीड़ बैग इतना मधुर। तो मानो हम ये जो आजकल गर्मी में इतने गन्ने के जूस मिलते हैं, हम एक अपनी दुकान लगाए, हरे कृष्णा रसवंती ग्रह, और वहां पर सभी देखते हैं रसवंती ग्रह, चलो और हरे कृष्ण का है, तो तो अंदर जाएंगे तो बोलेंगे भाई एक एक ग्लास देना मुझे, तो उसे लाके बीड़ बैग दे दिया, ये लो। ये है यहां का मधुर रस। तो कितने लोग उस रसवंती ग्रह में कितने समय तक आएंगे। तो ये पीलिया का रोग कोई रस नहीं, जंग चढ़ा हुआ लोहे के ऊपर, इसलिए चाहे कितना भी फेंको चुंबक के ऊपर कोई फर्क नहीं, और चाहे कितना भी बड़ा चुंबक ले आओ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये एंटी रस्ट एलिमेंट है, कि ये चुंबक के ये जो लोहे के ऊपर जो जंग चढ़ा है इसे न केवल ये धोकर साफ करेगा हरे कृष्ण महामंत्र, बल्कि फिर से चढ़ने नहीं देगा उस जंग को। कई बार बारिश में लगाया जाता है वो साइकिल या इसके ऊपर एंटी रस्ट, कि उसके ऊपर जंग न चढ़े। तो वैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र है कि दोनों काम करता है, कि साफ भी करेगा और फिर से जंग चढ़ने नहीं देगा। तो प्रहलाद महाराज वो कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से, वो घमंड से नहीं कह रहे, वो स्वाभाविक रूप से मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आकर्षित हो रहा हूं ये भगवान विष्णु रूपी चुंबक के प्रति। स्वाभाविक रूप से, और हम स्वाभाविक रूप से माया के प्रति आकर्षित होते हैं। हम में भी स्वाभाविक गुण हैं प्रहलाद महाराज के समान, परंतु स्वाभाविक गुण किसके प्रति है? माया के प्रति। स्वाभाविक तरीके से आकर्षित हो जाते हैं, और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि दोनों निकट है जीव के, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। दोनों निकट हैं, और दोनों निकट क्यों हैं? कृष्ण निकट हैं क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके प्रति उन्मुख हों, और माया निकट क्यों है? क्योंकि हमने रखा है माया को निकट। दोनों में अंतर यह है, कृष्ण को निकट में नहीं रखना चाहते, परंतु जबरदस्ती कृष्ण निकट आते हैं परमात्मा के रूप में, और माया को हम जबरदस्ती निकट रखना चाहते हैं, ताकि, और कई बार हमें ज्ञान हो जाता है कि माया को निकट नहीं रखना चाहिए, कृष्ण को निकट रखना चाहिए और कृष्ण की तरफ उन्मुख होना चाहिए। तो भक्ति में, साधना भक्ति में हमारी स्थिति कैसी हो जाती है कई बार, कि ज्ञान है कि माया की तरफ मुख करूंगा तो झपटिया धरे, ये झपट कर तीन गुणों के अधीन कठपुतली बना देगी मुझे, और ज्ञान है कि कृष्ण की तरफ उन्मुख होऊंगा तो कृष्ण भी झपटिया धरे, परंतु कृष्ण जब झपटेंगे तो मुझे अपनी भक्ति में लगाएंगे। परंतु साधना भक्ति में हमारी स्थिति एक ऐसी आ जाती है कि हमको दोनों चाहिए, थोड़े कृष्ण भी चाहिए और थोड़ी माया भी चाहिए। तो एक आंख से इधर देखते रहते हैं, एक आंख से इधर देखते रहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसमें फिर कई बार यहां से खिंचाव होता है थोड़ा, और कई बार यहां से खिंचाव होता है। तो दो जगह से यदि खिंचाव हो तो वो खेचातानी बहुत समस्याजनक होती है। तो इसलिए भक्ति में हमें समस्या क्यों अनुभव होती है? क्योंकि कई बार वहां से खिंचाव होता है और बहुत बार यहां से खिंचाव होता है माया की तरफ से। परंतु प्रहलाद महाराज वो पूर्ण प्रकार से भगवान के प्रति खिंचाव है और वही खींच रहे हैं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जिन्होंने ये गुण पाया केवल श्रवण करने से, ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ने भक्ति के बहुत से और कुछ अंग किए थे। प्रहलाद महाराज के पास कोई मूर्ति भी नहीं थी अर्चा विग्रह करने के लिए, कोई मंदिर नहीं था जाने के लिए, कोई सीढ़ी सुनने के लिए नहीं, जो कुछ सुना बस, जो कुछ श्रवण किया बस, केवल माता के गर्भ में नारद मुनि से। कोई तीर्थ स्थान जाने के लिए कोई अनुमति नहीं। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज साल में दो तीन यात्रा जाते थे, चलो कभी नासिक चले जाते हैं, कभी वृंदावन मायापुर या अहोबलम नरसिंह क्षेत्र वहां चले जाते हैं। कोई यात्रा की सुविधा नहीं, कोई अर्च विग्रह की आराधना करने की सुविधा नहीं। पता नहीं प्रसाद मिलता था कि नहीं प्रहलाद महाराज को रोज खाने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु उसके साम्राज्य में तो कोई चांस नहीं था बिना प्याज लहसुन के कुछ मिले। वो तो राक्षस था और राक्षस तो मांसाहार इत्यादि करते हैं। तो देखिए ये सब जो हमें भक्ति में मिले हुए हैं, श्रवण के साथ कीर्तन, कीर्तन के साथ अर्च विग्रह की आराधना, दर्शन, यात्रा जाने के लिए भक्तों का संग, क्या कुछ नहीं, भक्ति के इतने सारे अंग हमें मिले हैं। परंतु प्रहलाद महाराज को केवल एक ही श्रवण, और उसके पश्चात स्वयं ही उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया। ऐसा नहीं थी कीर्तन के लिए बहुत से लोग थे कोरस में और सभी जानते थे कि प्रहलाद महाराज क्या गा रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज अपने हिरण्यकशिपु षंड अमर के विद्यालय में रिसेस के समय प्रवचन शुरू करते थे, कीर्तन शुरू करते थे, तो ये सारे जो आसुरी बच्चे, बाकी सारे असुर के बच्चे, ये सारे आसुरी बच्चे ये केवल आश्चर्यचकित होकर देखते रहते थे। तो प्रहलाद महाराज सिखाते थे, चलो हाथ ऐसे ऊपर करो और इतना ऊपर करके क्या करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं था कि प्रहलाद महाराज केवल हाथ ऊपर करते ही सभी हरे कृष्णा शुरू कर देते थे, सबको सिखाना पड़ता था। अकेले प्रहलाद महाराज और कोई मृदंग करताल जैम्बे भी नहीं था, कुछ नहीं, अकेले प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे थे इन सबको। और ये सब प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि भाई ये सब मेरे हमारे साथ तुम पैदा हुए हो, हम उम्र हो, एक ही उम्र के हैं हम सब, ये सब कहां पर ये सब सुना, किसने ये सब सुनाया? तो प्रहलाद महाराज उनको ठीक ठीक बताते हैं कि मैंने अपने माता के गर्भ में नारद मुनि के मुख से सुना। और प्रहलाद महाराज ने दर्शन नहीं किया नारद मुनि का, ऐसा नहीं कि नारद मुनि का कोई रिले हो रहा था उनके, उनका उनका वीडियो निकाल कर रिले कर रहे थे प्रहलाद महाराज को कि ये है नारद मुनि, ये सुना रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने दर्शन भी नहीं किया, केवल अपने कर्णों से दर्शन किया। और ये प्रहलाद महाराज देखिए, और इसीलिए ये प्रहलाद महाराज जिन्होंने इस प्रकार से श्रवण किया भगवान के विषय में, तो वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कैसे श्रवण किया प्रहलाद के चरित्र के विषय में। चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को कहते थे कि प्रहलाद और ध्रुव का चरित्र बार 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 रिवाइंड कर सुनाते रहो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये देख रहे थे कि यही प्रहलाद जिसने मेरे विषय में श्रवण किया है इतनी तीव्रता से, तो भगवान श्रवण कर रहे हैं देखिए अपने भक्त के चरित्र के विषय में। और देखिए दोनों कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं भगवान कृष्ण, और गदाधर पंडित कौन है, राधा रानी। तो राधा और कृष्ण बैठकर ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, और जो सहजिया होते हैं वो बैठकर राधा कृष्ण के जो दिव्य लीलाएं हैं अनुचित तरीके से उसका श्रवण करते हैं। और यहां पर राधा कृष्ण बैठकर प्रहलाद महाराज के श्रवण कर रहे हैं। तो ये है प्रहलाद महाराज के गुण। इसीलिए बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज यहां पर कहते हैं कि ये जो स्वतंत्र रत्न है मेरा, हम सबको एक स्वतंत्र रत्न मिला हुआ है, वो है हमारी स्वेच्छा, उसे स्वतंत्र रत्न कहा गया है। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे पास वो भी नहीं है। इस संसार में देखिए, हम सब ये जो अपने अंदर स्वतंत्रता मिली हुई है, हम इसे कितना पकड़ कर रखना चाहते हैं, ये किसी को नहीं देना चाहते। बाकी सब कुछ मेरा ले लो, मेरा पैसा ले लो, मेरा समय ले लो, मेरी शक्ति ले लो कुछ समय के लिए, परंतु मेरे अंदर जो मेरी स्वेच्छा स्वतंत्रता है उसके विषय में कभी पूछना मत, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट रत्न है। तो हम सब इस स्वतंत्र रत्न को पकड़ कर रखना चाहते हैं, और भगवान गीता में यही बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि उस स्वतंत्र रत्न को भी परित्याग कर मेरे चरणों में डालो, जो कि प्रहलाद महाराज ने डाल दिया। तो प्रहलाद महाराज को इसीलिए भागवत में सातवें स्कंद में कहा गया है कि जैसे सभी संसार में अलग अलग ग्रहों से वो वशीभूत हैं, हम सब के ऊपर कोई ना कोई ग्रह मंडरा रहा है, किसी के ऊपर शनि है, किसी के ऊपर और कुछ है, राहु है, केतु है, ये है वो है। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर कौन सा ग्रह था? कहा गया है कि प्रहलाद महाराज भी एक ग्रह के वशीभूत थे, उनका ग्रह था कृष्ण ग्रह ग्रहतात्मा। प्रहलाद महाराज वशीभूत थे कृष्ण ग्रह से, उनका एक ही गोत्र था अच्युत गोत्र, और वो कृष्ण ग्रह से वशीभूत थे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज वो अपनी प्रार्थनाओं में भगवान श्री नरसिंह देव को कहते हैं कि आप अपना दर्शन दे रहे हो, इससे अतिरिक्त और कुछ मुझे नहीं चाहिए। नरसिंह भगवान पूछ रहे थे, मांगो प्रहलाद, मांगो, कुछ मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूं। अभी देखिए, हम नरसिंह भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते रहते, रोज नरसिंह आरती, जब भी कोई परेशानी हो तुरंत नरसिंह आरती शुरू कर दो, प्रार्थना करो उनसे। यहां पर प्रहलाद महाराज के सामने साक्षात नरसिंह देव, और साक्षात नरसिंह देव पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज को मांगो, और प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं कोई वणिक नहीं हूं हे भगवान, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि मैंने आपकी भक्ति की है ताकि जब आप आएंगे तो मैं आपसे ये सब मांगूंगा। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण क्या है, वो हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति में भी अलग अलग श्रेणियां होती है भक्ति करने की, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। तो जो रजोगुण की भक्ति होती है उसमें हम कुछ चाहते हैं, भक्ति के द्वारा कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, भौतिक चीजें, कि भक्ति करने से या विशेष रूप से हरे कृष्ण आंदोलन में भक्ति करने से बहुत मुनाफा है, क्योंकि इस हरे कृष्ण आंदोलन में अच्छे कांटेक्ट मिलते हैं, इस हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत पैसा है, और इस हरे कृष्ण आंदोलन में आराम भी बहुत है, खाने को भी अच्छा मिलता है। तो यदि हम इस दृष्टिकोण से भक्ति करें तो इसे कहते हैं एक वणिक, एक व्यापारी की भक्ति, कि वो माला कर रहा है कुछ माल प्राप्त करने के लिए। तो वैसी भक्ति या वैसा दृष्टिकोण हमारा नहीं होना चाहिए जैसे प्रहलाद महाराज, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी नरसिंह भगवान देखिए हिला हिला कर पूछ रहे हैं, बताओ पूछो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अभी ठीक है, आप यदि इतना आग्रह कर रहे हैं, हाँ, जैसे कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं ना, कोई भक्त कहता है प्रभु जी बताइए क्या करूं मैं आपके लिए, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बताइए क्या, कुछ तो करना है मुझे। तो बहुत बार आग्रह करता था, हम कह देते हैं ठीक है एक पानी का ग्लास ला या ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर दो, या मेरी चप्पल टूट गई एक चप्पल ले आओ। तो बहुत आग्रह करने पे हम कह देते हैं ठीक है, मतलब अंदर से बहुत इच्छा थी कहने की, लेकिन अभी तिलक विलक लगाया है तो कैसे कह सकते हैं तुरंत। तो फिर जब भक्त इतना आग्रह करता है तो कहते ठीक है आपकी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं तो आपको प्रसन्न करने के लिए ठीक है आप कर दीजिए। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से नहीं कह रहे थे कि नरसिंह भगवान आप इतना आग्रह कर रहे हैं, और क्या है कि आप आग्रह कर रहे हैं तो ज्यादा मैं मना नहीं कर रहा हूं। भक्तों के संग पता नहीं गुस्सा हो गए फिर से आप तो क्या हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ठीक है आपको यदि मेरा मेरे लिए कुछ करना है, मेरी कुछ इच्छा पूरी करनी है तो मैं बताता हूं क्या इच्छा है। दो इच्छा बताते हैं कि ये जो हिरण्यकश्यपु मेरे पिता विष्णु द्रोही आपके द्रोही इनका उद्धार कीजिए देखिए, और दूसरी इच्छा कि इस संसार में जितने बद्ध जीवात्मा ये नरक की तरफ जा रहे हैं अपने पाप कर्मों के द्वारा इन सब को रोक दीजिए। तो भाई नरसिंह भगवान पूछते हैं भाई फिर इनका पाप वो कहां जाएगा, प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे ऊपर डालो, इन सब का पाप मेरे ऊपर डालो, और इन सब का पाप लेकर मैं जाना चाहता हूं नरक में, और नित्य काल तक नरक में मैं यातना भुगतने के लिए मंजूर हूं मेरे मुझे यदि ये सारे बद्ध जीवात्मा आपके धाम चले जाए। इसे कहते हैं वैष्णव। श्री प्रहलाद महाराज की ये प्रहलाद महाराज मांग रहे थे, और इसीलिए कहा गया है महाजनो ये न गता सपंता, कि ये प्रहलाद जो महाजन है इनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, विशेष रूप से आज के दिन जब उनके वजह से भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए। इसीलिए एक सुंदर श्लोक में शंकराचार्य ओ लक्ष्मी नरसिंह करावलंबम स्तोत्र में वो भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह देव इनके समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। अंधस्य मेरित विवेक महाधनस्य चौरैर प्रभो बलिभिरिंद्रिय नाम देह मोहांद कूप कुहरे विनिपाति तस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंभम। वो कह रहे हैं अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य, कि मेरे जीवन में कुछ चोर आए हैं चोरी करने के लिए, और ये चोर कैसे चोर हैं, महाबली भी बहुत शक्ति है इन चोरों में, और ये किस प्रकार से चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने मुझे अंधा बना दिया, जैसे चोर यदि चोरी करने जाए तो सबसे पहले लाइट बुझा देता है, अंधेरा कर देता है, अंधेरे में चोरी करता है, जब रात्रि का अंधेरा होता है तब जाकर वो चोरी करता है, और यदि कोई उसे देखता रहे तब चोरी नहीं करेगा, जब लोग सो रहे होते हैं तब चोरी करता है। सोने का अर्थ क्या है कि 6 घंटे के लिए अंधे बन जाता है वो व्यक्ति जब सोने जाता है। तो यहां पर इस श्लोक में शंकराचार्य कह रहे हैं कि इन चोरों ने महाबली भी चौरेर, इन चोरों ने सबसे पहले मुझे अंधा बना दिया कि मैं देख नहीं पा रहा हूं कि ये कौन से चोर हैं और कैसे क्या चोरी कर रहे हैं। तो मानो कोई व्यक्ति को अंधा बना दिया चोर ने, फिर भी उसके अंदर विवेक बुद्धि है कि वो जान सकता है कि ये चोर ने मुझे अंधा बनाया है और चोरी करने के लिए अंधा बनाया है, तो फिर मैं तुरंत चिल्लाऊं और दूसरों को बुलाकर इस चोर को पकड़वाऊं। तो शंकराचार्य कहते हैं यह भी संभव नहीं, क्योंकि चोरी करने से पहले उसने क्या चुरा लिया है, मेरी विवेक बुद्धि, ऋत विवेक बुद्धि, मेरी विवेक बुद्धि को सबसे पहले चुरा लिया। मानो ऐसा कोई चोर, देखिए जो घर में जाए चोरी करने के लिए और जो मालिक है उसकी विवेक बुद्धि चोरी करे पहले, तो वो चोर को पकड़ने के बजाय उसका स्वागत कर रहा है, बैठो सोफा पे बैठो, ये लो चाबी, और अभी भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए भी देता हूं। मानो कोई ऐसे चोर से व्यवहार करे तो वो सही में शक्तिशाली चोर है, जो विवेक बुद्धि चोरी कर ली है इसकी, कि वो जान भी नहीं पा रहा है कि ये चोर है या मेरा मित्र है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि ये महाबली भी चोर, इन्होंने मेरी विवेक बुद्धि को चोरी कर लिया है। तो कोई पूछे भाई चोरी क्या किया फिर इसके बाद, महाधनस्य, महाधन चोरी कर लिया, और वो महाधन कौन सा, कृष्ण प्रेम, इससे अधिक मूल्यवान धन हमारा और कोई नहीं, इस कृष्ण प्रेम महाधन को चोरी किया है। और इतना ही नहीं, चोरी करने के पश्चात मुझे मोहांध कूप, एक अंधे कूप में पटक दिया। अब भाई चोरी करके चले जाते मुझे छोड़ देते, परंतु चोरी करने के पश्चात मुझे मोह अंध कूप में ढकेल दिया। तो कोई पूछेगा भाई ये है कौन चोर, इतने निर्दयी, अंधा बनाया, विवेक बुद्धि हर लिया, महाधन चोरी कर लिया, मोह अंध कूप में डाल दिया, कौन है ये चोर। इंद्रिय नाम ध्येह, मेरी इंद्रिया, मेरी जो इंद्रिया है वही है चोर है। इसलिए हे लक्ष्मी नरसिंह, मम देही करावलंबम, मैं एक देही हूं और आप अपने कर कमलों से मुझे इस मोहांध कूप से बाहर निकालिए और अपने चरण कमलों पर रखिए। तो ये सुंदर प्रार्थना शंकराचार्य भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह के समक्ष कर रहे हैं। तो ये जो महान भक्त हैं, भगवान श्री नरसिंह देव की कृपा प्राप्त करनी है तो इन महान भक्तों की कृपा हमारे जीवन में होनी चाहिए, विशेष रूप से श्री प्रह्लाद महाराज। और इस श्लोक में प्रह्लाद महाराज जो अपनी स्थिति दर्शा रहे हैं, वो नम्रता से कह रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं चुंबक का, लोहे का गुणगान नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं लोहे में कोई गुण नहीं, चुंबक में गुण है जो लोहे को आकर्षित कर रहे हैं। परंतु हम जानते हैं कि प्रह्लाद महाराज वो उस लोहे के समान हैं जो इतने विशाल हैं अपनी भक्ति में कि वो इस नरसिंह भगवान जो कि चुंबक के समान है उसे उन्हें खींच रहे हैं। और उन्हें वो कैसे खींचेंगे, कब खींचेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे आज संध्या का। बोलो श्री नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्री प्रह्लाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदी।